मेरे प्रिय युवा साथियों नमस्कार। आज 14 जुलाई 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के क्रम में ही मैं आप लोगों को आज कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा जो हर शुक्रवार की ही सूचनाएं होती हैं। और वे सूचना ये है फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार यानी कि आने वाले दो दिनों तक कोई डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कल यानी कि शनिवार को प्रेस क्लिपिंग्स आप सबको उसी तरह से मिलती रहेंगी जैसे कि अभी मिल रही है। साथ ही चूंकि अगला दिन रविवार का दिन होगा तो आपको कुछ रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल होंगे जिसमें योजना के दो आर्टिकल होते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल्स होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, यानी कि टोटल चार आर्टिकल्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक वीकली क्वेश्चन होता है जिसे हम साप्ताहिक प्रश्न कहते हैं जो पूरी तरह से मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। 200 शब्दों का आपको उत्तर लिखना होता है या कभी कभी हम निबंध भी दे देते हैं तो ताकि आप सप्ताह भर तैयारी करके उसका उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकें जो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप मन सकें, धीरे धीरे उस रिदम में आ सकें, इस उद्देश्य से आपको एक प्रश्न उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का प्रश्न आपको दे दिया जाता है। टॉपिक बहुत सोच समझ कर सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। फिर उनकी फ्रेमिंग भी यानी कि बुनावट भी इस तरीके से रखी जाती है जो सिविल सर्विस परीक्षा के ही समानांतर हो। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्लीज इसको इग्नोर न करें। और इसके साथ ही साथ हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। मित्रों, इस सूचना के बाद आज मैं आपको मुख्य विषय के बारे में बता दूं। आज हम जो हमारे संसद हैं या सांसद हैं उनके जो विशेषाधिकार होते हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, उनके उन पर हम कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब हम थोड़ा सा न्यूज को देख लेते हैं। सच पूछे तो न्यूज में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है अगर मैं उसके महत्व के आधार पर उसकी प्रायोरिटी फिक्स करूं तो वो है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खास जो गंगा नदी के बारे में जो अभी अपना फैसला सुनाया, आदेश दिया है। हालांकि आप देखेंगे कि यह एक याचिका थी जिसको जनहित याचिका कहते हैं और लगभग 20-22 साल के बाद उस जनहित याचिका पर फैसला आया है। मित्रों, इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो अपना निर्णय दिया है वो ये है कि गंगा नदी के 500 मीटर के दायरे में यानी कि आधा किलोमीटर के दायरे में कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं किया जा सकता, वहां कचरा फेंका नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वो फिर शहर का कचरा या उद्योग अपने औद्योगिक कचरा वहां जाकर के डाल देते हैं, डंप कर देते हैं, और फिर यही कचरा एक तो वहां प्रदूषण फैलाता ही है, वायु प्रदूषण, दूसरी बात कि कचरा फिर सड़ता रहता है, जब वर्षा का पानी उस कचरे पर पड़ता है तो कचरा फिर गलता है और फिर वो सड़ा हुआ पानी जमीन के अंदर जाता है, भूमिगत जल में जाता है, कुछ उसी वही सड़ा हुआ पानी एक तरह से नाले के पानी में तब्दील होकर, नाली के पानी में कह लीजिए, गंदे नाले के पानी में तब्दील होकर के फिर नदी के पानी में मिलता रहता है। तो एक ये फैसला है 500 मीटर तक आप कचरा नहीं डाल सकते, और दूसरा उन्होंने कहा है कि 100 मीटर तक के एरिया में आप निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि घर वगैरह नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते या दूसरे उपयोग नहीं कर सकते। अब उसके अपने पैरामीटर्स हैं। उसका कारण यह होता है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी आपने इतनी पढ़ी ही होगी कि नदी का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, कैचमेंट एरिया यानी कि जहां से वर्षा का जो जल है, पानी जो है वो बह बहकर उस नदी तक पहुंचता है, वो कैचमेंट, मतलब कैचमेंट का यही मतलब, कैच का मतलब है पकड़ना, यानी कि ये जो नदी है ये कहां कहां के पानी को पकड़ रही है, पकड़ करके नदी तक ला रही है, वो कैचमेंट एरिया है। अगर हम मकान बना देते हैं या और कुछ दूसरे निर्माण कार्य करते हैं तो डेफिनेटली फिर वो पानी वहां रुक जाएगा या डाइवर्ट हो जाएगा, फिर वो नदी तक नहीं पहुंच पाएगा और नतीजा ये होते हैं कि फिर जो जल स्रोत होते हैं, जल जलाशय होते हैं, वो सूखने लगते हैं, उससे पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो एक तरह से यूं कह लीजिए कि उनकी अकाल मृत्यु होने लगती है। तो उसे बनाए रखने के लिए कि उनमें पानी की भरपूर मात्रा आती रहे, 100 मीटर तक के क्षेत्र में दोनों ओर जो निर्माण कार्य हैं उनको गैर कानूनी करार दिया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है फ्रेंड्स, हरिद्वार से उन्नाव तक के लिए इन्होंने ये बात कही है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो गंगा सफाई अभियान है ये हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, खासकर नदियों के प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से। और वैसे भी गंगा नदी के महत्व को आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण नदी है कि हर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को गंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहां से निकलती है, कहां वो भगीरथी कहलाती है, कहां से उसका नाम गंगा पड़ता है, फिर निकल करके वो किन किन राज्यों में बहती है, कुल कितने राज्यों में बहती है, कितने किलोमीटर लंबी है, अंत में जाकर के वो कहां गिरती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों संदर्भों में क्या महत्व है। मुझे लगता है कि ये केवल सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। यहां मैं कोई धार्मिक भावना से नहीं कह रहा हूं, इसका जो आर्थिक महत्व है, इसका जो सांस्कृतिक महत्व है वो उस दृष्टि से कह रहा हूं। और धार्मिक महत्व तो आस्था का जहां तक सवाल है वो है ही। तो ये मित्रों, मैंने आपको थोड़ा सा गंगा सफाई अभियान के बारे में बताया, और गंगा सफाई अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सिविल सर्विस की दृष्टि से है। तो ये आप उसे अपडेट कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर में ही एग्जाम होना है और बाय द वे ये प्रश्न पूछ लिया गया, तो आपको चाहिए कि आप इसे भी लिखें, क्योंकि ये बिल्कुल करंट है। अब ये मैगजीन में नहीं मिलेगा आपको, मैगजीन में मिलेगी तो अगले महीने की मैगजीन में मिलेगी, लेकिन आप अगर अपने लेवल पर न्यूज सुन करके अपडेट कर लेते हैं, अखबार पढ़कर अपडेट कर लेते हैं, तो यही तो आपका अपना बड़ा योगदान है। और यही बात फिर एग्जामिनर पर इम्पैक्ट भी डालती है, उसको इम्प्रेस करती है कि हाँ स्टूडेंट बहुत सतर्क है। मित्रों, फिर जो दूसरी खबर थी वो भारत और चीन में जो अभी तनाव की स्थिति चल रही है उसके बारे में स्टेटमेंट था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का। वो आपने सुना भी, डोकलाम जो स्थान है वो बड़ी चर्चा में है, और इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले बात की थी। जब ये बहुत चर्चा में नहीं आया था तभी मैंने इसकी चर्चा कर दी थी कि किस तरह कहां स्थित है, भूटान के अंतर्गत आता है छोटा सा क्षेत्र जिसमें चीन अपनी घुसपैठ करना चाहता है ताकि उसे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक तरह से पूरा का पूरा गलियारा मिल जाए। इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। हो सकता है प्री में सीधे सीधे ना पूछा जाए, क्योंकि जो स्थान बहुत चर्चित हो जाते हैं ना प्री में, फिर मैंने देखा है कि उसे नहीं पूछते हैं। लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये भारत और चीन के अभी जो तनाव चल रहा है उसके केंद्र में है, तो इसकी अच्छी जानकारी, ठीक ठाक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और एटलस में इसे आपको जरूर लोकेट करना चाहिए कि यह स्थान एग्जैक्टली कहां है। तो मित्रों, ये दो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज थी जिनके बारे में मैंने चर्चा की। अब मैं थोड़े से दो तथ्यों पर आता हूं जो छोटी न्यूज है, मतलब न्यूज में नहीं है लेकिन अखबारों में जिसे जगह मिली है और मुझे सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स की अभी सरकार ने एक परियोजना को मंजूरी दी है, और जिसके सड़क परियोजना है, और इस सड़क परियोजना के तहत जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इम्फाल को मोरेह से जोड़ा जाएगा। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसको 4 लेन में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH 39। आपको मालूम होना चाहिए NH 39, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह इम्फाल से मोरेह तक जाएगा, और ये जो मोरेह है ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा हो जाने पर, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और आप दिल्ली से बैंकॉक जाना चाह रहे हैं तो आप बाई रोड जा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है, और जब ये सड़क बनेगी तो इससे लगभग 2,67,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और नो डाउट कि इससे पूर्वोत्तर भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनमें तेजी तो आएगी ही। तो चूंकि पूर्वोत्तर भारत पर अभी सरकार का बहुत जोर है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम ज्यादा से ज्यादा विकसित करें आर्थिक रूप से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और प्री की भी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है NH39। मित्रों, इसके बाद एक दूसरी खबर है, थोड़ी छोटी खबर है लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है और स्टेट सिविल सर्विस के लिए भी, और वो ये कि सरकार ने निर्णय लिया है कि बनारस में वाराणसी, जिसका मॉडर्न नाम वाराणसी है, कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय है याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय इकाई की स्थापना की जाएगी। मतलब साउथ एशिया की जो यूनिट होगी, जो ब्रांच होगी आप कह लीजिए, वो वाराणसी में खोली जाएगी और इससे पूरे के पूरे साउथ एशिया को, साथ ही साथ अफ्रीका को, भारत को तो उससे फायदा होगा ही, और उसके बारे में, चावल के बारे में अनुसंधान किया जाएगा कि इन क्षेत्रों में चावल की कौन सी किस्म अच्छे से अच्छे पैदा हो सकती है, तो एक प्रकार से अफ्रीकी और एशियाई देशों में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे फ्रेंड हमारे यहां ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसका हमारे यहां के खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो एक संस्थान है, दिल्ली में है, पूसा में स्थित है, उसी तरह का यह एक संस्थान होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो मित्रों, ये दो फैक्ट के बाद अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और हम इस थोड़ा सा इस विषय को देखते हैं क्योंकि यह मुझे पॉलिटी का और कॉन्स्टिट्यूशन का, दोनों को हम कंबाइन कर दें तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मालूम पड़ रहा है फ्रेंड्स, और इसलिए भी मालूम पड़ रहा है कि अभी कुछ घटनाएं इस तरह की हुई हैं। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि कर्नाटक विधानसभा ने खासकर कुछ पत्रकारों को, जिन्होंने वहां की विधानसभा को सदस्यों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी, अखबारों में छापा था, तो उनको सजा सुनाई है इस बिना पर, इस तथ्य को लेते हुए कि विधानसभा के सदस्यों के, यानी कि जो MLA है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके अपने कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उनको उस विशेषाधिकार के तहत कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो उनके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता, यानी कि इसे एक प्रकार से विधानसभा की अवमानना मानी गई, कंटेम्प्ट ऑफ असेंबली इस रूप में लिया गया है। तो हम थोड़ा सा इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी ऐसा टॉपिक आए तो आपको चाहिए कि आप संविधान में उसकी स्थिति को देखें कि इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। देखिए, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बिना कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे भी आप चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, उसकी जानकारी होनी चाहिए विथ रेफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे रेफरेंस आप याद कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उनके रेफरेंसेज आपको मालूम होने चाहिए। जैसे चुनाव आयोग के बारे में मैंने कहा कि अनुच्छेद उसका आपको मालूम हो, तो इसी तरीके से अब ये जो सांसद के विशेषाधिकार हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद इसका कौन सा है, केवल इसी पर फोकस कीजिए। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पलटेंगे फ्रेंड, तो उसका अनुच्छेद 105 है, जो स्पेशली जो सांसद हैं और उनके द्वारा बनी गई जो समितियां हैं उनकी शक्तियां और विशेषाधिकार की बात करता है। अब इसी में ये 105 ये है, और इसी के साथ ही एक और भी अनुच्छेद है। देखिए, मैं अभी सांसदों की बात कर रहा हूं और सिविल सर्विस में सांसदों के बारे में ही पूछा जाएगा, जनरली विधानसभा के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन विधानसभा का भी उल्लेख हमारे संविधान में है, तो सांसदों के बारे में अनुच्छेद 105 है, तो विधानसभा के सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 194 है, 194 है। आप देखेंगे कि स्थिति लगभग एक जैसी ही है। अब आप देखिए कि इसमें दो बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं, मैं तो जितना मेरे पास वक्त है मैं उसी वक्त के तहत अब जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वही आपके सामने रखूंगा। दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं अनुच्छेद से जो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो यह है कि ये जो संसद सदस्य हैं ये अपने अधिकारों कर्तव्यों के निर्वाह के लिए संसद में जो कुछ भी कहेंगे उन्हें वाक स्वातंत्र होगा, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता होगी, और वो जो भी कर रहे हैं कह रहे हैं उसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। तो ये उनको एक विशेषाधिकार दिया गया है ताकि वो निडर होकर तटस्थता के साथ अपनी बात रख सकें, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, उसी अनुच्छेद 105 में ही आगे चल करके ये कहा गया है फ्रेंड्स कि जो संसद है वो समय समय पर इन ये जो समितियों की शक्ति होती है, जो सदस्यों की शक्ति होती है और उनके जो विशेषाधिकार होते हैं और जो उन्मुक्तियां होती हैं उनके बारे में कानून बनाएगी, समय समय पर उनके बारे में वह कानून बनाएगी। देखिए दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो ये है कि उनको कुछ उन्मुक्तियां दी गई, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए, लेकिन वो विशेषाधिकार क्या हैं, उन्मुक्तियां क्या हैं, उनका कब उपयोग करेंगे, कब कौन सी सीमा है, कौन सी मर्यादा है, संविधान ये कह रहा है कि उसके बारे में संसद राज्यों के संदर्भ में विधानसभा कानून बनाएंगी, राइट। अब सवाल ये है कि संसद के जो इस तरह के विशेषाधिकार हैं, स्पेशली सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं, उसकी बात तो होती है और कई बार ऐसा हुआ है कि विधानसभाओं ने स्पेशली खासकर पत्रकारों को सजाएं दी हैं, उन्होंने बकायदे सजाएं दी हैं, अवमानना पर, कंटेम्प्ट होने पर सजाएं दी हैं। देखिए अगर हम एमएलए का अपमान कर रहे हैं या एमपी का अपमान कर रहे हैं तो वो सभा का ही अपमान होता है, जैसे अगर किसी न्यायाधीश का अपमान किया जा रहा है तो वो न्यायालय का ही अपमान माना जाता है, कई बार सजाएं दी। और इसको लेकर के फिर कोर्ट में मामले भी चले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डिसीजंस भी दिए हैं। अब देखिए कि स्थिति क्या है, स्थिति कुल मिलाकर के ये है फ्रेंड्स कि जब ये संविधान बना था 1949-50 के आसपास बना था, अब उससे हम बहुत आगे निकल चुके, 70 साल आगे आ चुके हैं। हालांकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, वो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी चलिए उसे पारित किया गया। अब इस 70 सालों में पूरी की पूरी व्यवस्था में आपको एक जबरदस्त बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए कोर्ट को भी जो इतने विशेषाधिकार मिले इस पर भी बात उठती है, जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बातें उठने लगी हैं, कोर्ट के अधिकारों को कैसे सीमित किया जाए, बीच बीच में ऐसे भी आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते होंगे। तो स्वाभाविक है कि जो सांसदों के विशेषाधिकार है इस पर भी बीच बीच में सवाल उठते हैं, प्रश्न किए जाते हैं कि इनको सीमित किया जाए। और सीधी सी बात है कि क्योंकि संविधान में दिया गया है कि भाई आप इसके बारे में कानून बनाइए, तो कानून बनाया जाना चाहिए। शायद आपको लोगों को मालूम हो कि जो हमारे जस्टिस थे न्यायमूर्ति वेंकट चलैया जी, उनकी अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग बना था। उस संविधान समीक्षा आयोग ने उन्होंने पूरे संविधान की समीक्षा करके कुछ सिफारिशें की थी, उसमें उन्होंने स्पेशली कहा था कि अब समय आ गया है कि सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं इनको बकायदे पारिभाषित किया जाना चाहिए और उनकी सीमाएं बनाई जानी चाहिए, ये उन्होंने बात कही थी। और सीधी सी बात है कि अब आप देखिए कि न्यायालय में ही देखिए कि कितना परिवर्तन हो गया है, जनहित याचिकाओं का सैलाब आया हुआ है, न्यायिक सक्रियता कितने आगे बढ़ गई है ना जनहित याचिका के माध्यम से। तो जब अधिकारों की जो बुनियादी परिभाषा है जब वही बदल रही है, तो बट नेचुरल है कि सांसदों के भी जो अधिकार हैं उसमें बदलाव आने चाहिए। तो इस तरीके से मित्रों मैंने आपका एक पक्ष रखा है। और आपको एक बात और भी यहां बता दूं कि ब्रिटेन में जब शुरू में विशेषाधिकार जो दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे कि आपने डेमोक्रेसी तो लागू कर दी, लेकिन राजा हेड था तो संसद में जो सदस्य होते थे वो राजा के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, अब राजा उनको दंड दे देता था। तो अब यह हुआ कि भैया ये तो फिर तो आप राजा के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं, और अगर राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तो लोकतंत्र कैसा। तो वहां के संसद ने फिर कानून बनाया कि नहीं, पार्लियामेंट में हमारे जो सदस्य हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं और उसके लिए राजा कुछ नहीं कर सकता, वो उस प्रोटेक्शन के लिए वो बात की गई थी। लेकिन अब तो वो स्थिति खत्म हो गई। और सच पूछे तो भारत में तो है ही नहीं, भारत में राजतंत्र है नहीं, हमारे जो हेड है राष्ट्रपति वो निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत ब्रिटेन की तरह मामला नहीं है। तो अब तो जब ब्रिटेन में ही ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, अमेरिका में 20 साल से ऐसी कोई सजा नहीं दी गई है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से इसको खत्म ही कर दिया है, कानून बना करके परिभाषित कर दिया, मतलब संहिताबद्ध कर दिया है, तो फिर भारत को भी इस बारे में विचार करना चाहिए और संविधान में बकायदे वो प्रोविजन दिया गया है और इस तरीके से उसको किया जाए ताकि जो प्रेस की जो आजादी है वह भी बनी रहे और हमारे जो सांसद हैं उनके जो विशेषाधिकार हैं वो भी बने रहे। तो इन दोनों के बीच में संतुलन बनाते हुए कुछ इस तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए, यह मुझे लगता है कि सबसे अनुकूल निष्कर्ष हो सकता है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है मैं आपको प्रेस क्लिपिंग्स कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं, वो आप लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से आप देख लेंगे। और अब मैं आता हूं फ्रेंड्स अंतिम चरण पर, जो स्वागत करने का चरण है। और मैं ये स्वागत करता हूं अपने उन तीन स्टूडेंट्स का जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं हरी राम खुरखुरिया जोधपुर राजस्थान से, भवानी सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान से, और मिंटू कुमार कड़क चानूरगंज बिहार से। आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों अब इसी के साथ ही मैं दो दिनों के लिए आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।